समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एआईआर एफएम गोल्ड चैनल पर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में आपका अभिनंदन करते हैं दो मेजबान। मैं हूं दिव्या तोमर और साथ में हैं रेणु कठारिया। गुड मॉर्निंग रेणु।
गुड मॉर्निंग एंड हेलो दिव्या एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। Dear listeners, we bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we will share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 20th of June.
नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर।
Prime Minister Narendra Modi is set to embark on a two-day visit to Jammu and Kashmir starting today. He will lay the foundation stone and inaugurate 84 major developmental projects valued at more than 1,500 crore rupees in the Union Territory. Mr. Modi will participate in the Empowering Youth Transforming J&K event in Srinagar today. The Prime Minister will also distribute appointment letters to more than 2,000 individuals appointed to government service. He will also launch the Competitiveness Improvement in Agriculture and Allied Sectors project worth 1,800 crore rupees. Tomorrow, PM Modi will lead the 10th International Yoga Day celebrations in Srinagar by participating in a yoga session and addressing the gathering.
केंद्र सरकार ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, महाराष्ट्र का वधावन बंदरगाह विकसित करने और गुजरात तथा तमिलनाडु में समुद्र तट के पास पहला पवन टर्मिनल विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने वाराणसी हवाई अड्डे के विकास और राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान अवसंरचना वृद्धि योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बैठक में 5 बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 14 फसलों पर विपणन सत्र 2024-25 के लिए जब 2025 के लिए किया जाएगा और इसका की माल वाहन क्षमता प्रबंधन क्षमता 2,30,00,000 टन होगी। उन्होंने कहा कि बंदरगाह आने वाले वर्षों में लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार देगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इस दिशा में सरकार ने पहले तटीय पवन टर्मिनल विकसित करने का भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात और तमिलनाडु में 500-500 मेगावाट क्षमता की दो परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि बैठक में 69 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में सभी मौसम के लिए उपयुक्त नया बंदरगाह विकसित करने का भी निर्णय लिया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक बुनियादी ढांचा संवर्धन योजना को स्वीकृति दी जाएगी और देश भर में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के ऑफ कैंपस की स्थापना की जाएगी।
UGC NET June 2024 examination has been cancelled by the government. A fresh examination will be conducted later, for which the information will be shared separately. The examination has been cancelled after the inputs from India Cybercrime Coordination Centre indicated that the integrity of the examination may have been compromised. The matter is being handed over to the Central Bureau of Investigation for thorough investigation in the matter. The National Testing Agency, NTA, conducted the UGC NET June 2024 examination on Tuesday in two shifts across different cities of the country. Yesterday, the University Grants Commission received certain inputs from National Cybercrime Threats Analytics Unit of Indian Cybercrime Coordination Centre, 14C, under the Ministry of Home Affairs on the examination.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माई गॉव इंडिया पोस्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाभ अर्जन दर्शाए जाने पर इसकी प्रशंसा की। आंकड़ों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक का 2013-14 में 10,800 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ बढ़कर 2023-24 में 61,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुनाफा एक दशक पहले के 4,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 17,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने भी पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा पिछले साल निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक में 82% की बढ़ोतरी हुई। उसने मुंबई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक के 21% और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी के 25% की वृद्धि की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
External Affairs Minister S. Jayashankar will reach Colombo today as part of his official visit to Sri Lanka. During the visit, Dr. Jayashankar will have meetings with the leadership of Sri Lanka on wide-ranging issues of bilateral partnership. This will be External Affairs Minister's first bilateral visit after the formation of new government under Prime Minister Narendra Modi. Reaffirming India's neighbourhood-first policy, the visit underlines India's continued commitment to Sri Lanka as its closest maritime neighbour and time-tested friend.
भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल सर्टिन और मास्टरकार्ड इंडिया ने देश में वित्तीय क्षेत्र की साइबर अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा मजबूत करने में दोनों संस्थाएं साझा विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेंगी। वित्तीय क्षेत्र के संगठनों की साइबर सुरक्षा बढ़ाने में वे साइबर क्षमता वर्धन, नवीनतम प्रचलन और सर्वोत्तम प्रणाली के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। दोनों संस्थाएं भारत के वित्तीय क्षेत्र की सूचना सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए मौजूदा साइबर खतरे से बचाव और तकनीकी जानकारी और आसन्न खतरे की खुफिया जानकारी और गंभीर कमियों की रिपोर्ट भी साझा करेंगे।
On the occasion of President Draupadi Murmu's birthday today, Akashwani will broadcast a recording of her exclusive interview by former Union Minister Smriti Zubin Irani. This broadcast can be heard at 8:45 a.m. on Akashwani Gold and the entire national network of Akashwani. You can also listen to this interview on our YouTube channel as well as on other social media channels of Akashwani. In Tamil Nadu, 26 people have died and more than 70 are undergoing treatment at various hospitals following a huge tragedy in Kalakurichi yesterday. Those who fell ill after consuming spurious liquor have been hospitalized at various hospitals in Kalakurichi, Salem and Jipmer in Puducherry. District Collector of Kalakurichi, where the incident happened, has been transferred and 10 other officials, including DSP, has been suspended. The bootlegger has been arrested and 200 litres of illicit liquor has been seized from him and sent for examination. Most of the affected people who consumed the illicit liquor had complained of giddiness, stomach pain and irritation in the eyes. The 18th edition Mumbai International Film Festival, MIFF, organized special screening of films interpreted in Indian Sign Language for Divyang students on the fifth day yesterday. These curated package films included episodes of Little Krishna, The Crossover and Jai Jagannath, all interpreted in Indian Sign Language. More than 50 students from Sanskar Dham Vidyalaya and Victoria Memorial School for the Blind attended the special screening, giving an overwhelming response to the film showcased. The organizers highlighted that for the first time ever, the entire MIFF team has been sensitized and trained to ensure a culture of inclusivity and empathy at MIFF 2024.
और टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन क्वींस क्लब चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर एर्लर और लुकास मिडलर की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 ग्रुप 1 में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा। ब्रिजटाउन बारबेडस में भारतीय समयानुसार मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ग्रुप 2 के सुपर 8 में आज इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला होगा। सेंट लूसिया के डेरिन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार ये मैच सुबह 6 बजे से जारी है.
And in archery, India the men's compound team of Jyoti Surekha Venam, Praneet Kaur and Aditi Gopichand Swami clinched a thumping win over Turkey in the semi-final round of the Archery World Cup Stage 3 yesterday.
और अब आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरें.
थैंक यू दिव्या. लेट्स बिगिन विद चेन्नई. Greater Chennai Corporation is in the process of identifying land to set up cow sheds. The city mayor R. Priya said that this initiative aims to address the issue of stray cattle causing accidents and inconveniences in the city. She said that many cow owners in the city lacked adequate space for their animals and the cattle roam around freely, often being the reasons for accidents on the road. The corporation first imposes a penalty of Rs. 5,000 and Rs. 10,000 for subsequent offences. The corporation has also initiated a dog census with assistance from NGO World Veterinary Services and TN Animal Welfare Board. This drive is expected to be completed in 2 months. More news from Chennai. P. Vrem Vatsa, an alumnus of IIT Madras and founder of Canada-based Fairfax Holdings Limited, has donated Rs. 41 crore as research grant to Sudha Gopalakrishnan Brain Centre at the Institute. Prem graduated from IITM with a first-class degree in chemical engineering in 1971. Sudha Gopalakrishnan Brain Centre was launched to power a global project to image the human brain at cellular levels by generating unprecedented human brain scientific output and technology tools. The centre has developed a world-class high-throughput history pipeline that processes human brains into high-resolution digital images at petabyte scale. And moving on to Bengaluru Metro, the National Sickle Cell Disease Elimination Mission of the central government is being implemented in 7 districts of Karnataka. Over the next 2 years, the mission aims to screen a total tribal population of 3,52,187 individuals aged 0 to 40 years in these 7 districts. Priority is given to 6 main particularly vulnerable tribal groups, PVTGs, namely Jainu, Kurubas and Koraga, followed by tribal communities such as Betta, Kuruba, Bera, Yerawa, Pania, Ediga and Nayaka due to higher prevalence of sickle cell disease. Those suffering from the sickle cell disease will receive a special genetic counseling card with several benefits. The card holders receive free hydroxyurea tablets, folic acid tablets, symptomatic management, blood transfusion services and counseling services at the government hospitals. And the last news that I have, Divya, is from Hyderabad Metro. The Supreme Court is going to conduct a special Lok Adalat from July 29 to August 3. With this, both the parties need to go to the Supreme Court in New Delhi. The Telangana State Legal Authority, TSLA, informed that the High Court identified 295 cases from the Telangana state and notices have been issued to the concerned parties. There is a chance of compromise in these matters. The authority further said the Supreme Court sent the list of cases to the High Court, and if both parties are interested, the court will be conducting a virtual conference with them. Member Secretary of the Authority said some of the parties have agreed to solve their cases in the Lok Adalat. He further said in the 75th year of its establishment, the Supreme Court of India is organizing the special Lok Adalat to facilitate amicable settlements of suitable pending cases. And the last news I have is again from Hyderabad Metro. On the occasion of 10th International Day of Yoga, the Central Bureau of Communication, CBC, Ministry of Information and Broadcasting, Hyderabad, in coordination with the Gandhi Gyan Mandir Yoga Kendra, has conducted an essay writing competition on yoga for self and society, which is the theme of the Yoga Day this year. The event had participation of students of all age groups, yoga enthusiasts and yoga instructors.
और रेनू, अब चलते हैं दिल्ली की खबरों के पास. और दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपी विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई. न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों को आज तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में पेश किया गया था. अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 मार्च को गिरफ्तार किया था और प्रवर्तन निदेशालय के मामले में मनीष सिसोदिया सहित 38 आरोपी हैं। आईएएस अश्विनी कुमार ने आज दिल्ली नगर निगम में आयुक्त का पद ग्रहण कर लिया है। निगम ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि श्री कुमार 1992 बैच के आईएएस के अधिकारी हैं। और दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में आज भी जल संकट बरकरार रहा। राजधानी के वसंत विहार, गीता कॉलोनी, ओखला, ईस्ट पटेल नगर, नेहरू विहार, लुटियंस दिल्ली, बवाना, नरेला, आनंद पर्वत, दिलशाद गार्डन, संगम विहार, करावल नगर और पंजाबी बस्ती सहित अन्य क्षेत्रों में पानी की समस्या बनी रही। इस बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हरियाणा सरकार से पानी दिलवाने का अनुरोध किया। अपने पत्र में श्रीमती आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली को हरियाणा द्वारा केवल 513 मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन मिल रहा है, जो उनकी जरूरत से 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम है। उन्होंने कहा कि इसके कारण राजधानी के 28 लाख लोग पानी की कमी से प्रभावित हैं। जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर 21 जून तक दिल्ली में जरूरत के अनुसार पानी नहीं मिलता है तो वो अनिश्चितकाल तक अनशन पर बैठेंगी। दूसरी ओर भाजपा ने आतिशी के पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल रही है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल उठाया कि श्रीमती आतिशी को अपने पत्र में यह भी बताना चाहिए कि दिल्ली जल बोर्ड पिछले 10 साल में 600 करोड़ के फायदे से 73,000 करोड़ के घाटे पर कैसे आया। इसके अलावा जल संकट पर ध्यान बढ़ाने के लिए भाजपा ने श्री सचदेवा के नेतृत्व में दिल्ली के सभी मंडलों में दिल्ली सरकार के विरूद्व पदयात्रा निकाली और पदयात्रा के दौरान दिल्ली के सातों सांसदों समेत अन्य भाजपा नेताओं ने जनता से बातचीत की और मिट्टी के खाली घड़े भी फोड़े। वहीं कांग्रेस ने भी जल मंत्री आतिशी की चिट्ठी की आलोचना की। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पूछा कि अगर उन्हें यह पत्र लिखना ही था तो 15 दिन पहले क्यों नहीं लिखा। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में जल वितरण की योजना बेहद लचर है। बेघर आश्रयों के कथित रूप से औचक निरीक्षण न करने पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। श्री भारद्वाज ने बताया कि 11 जून को उन्होंने DUSIB को आदेश दिया था कि कम से कम 5 बेघर आश्रयों का औचक निरीक्षण करने के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाना था। इन अधिकारियों को आश्रय स्थलों का निरीक्षण करना था और पाई गई कमियों की निरीक्षण रिपोर्ट कल तक सौंपनी थी, जो उन्हें अब तक नहीं मिली है। देश के विभिन्न भागों में लू की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार के अस्पतालों में लू के मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र सरकार के अस्पतालों में ऐसे मरीजों के इलाज के लिए विशेष इकाई बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने आदेश दिया कि लू के मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और इस बीच राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पिछले 3 सप्ताह में लू से 9 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। राजधानी में वायु गुणवत्ता के स्तर में आज भारी गिरावट आई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 4 बजे तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 306 दर्ज किया गया। 0 से 50 तक वायु गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। 51 से 100 तक के बीच वायु गुणवत्ता संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य और 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब मानी जाती है। दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पर प्रतिष्ठित क्वींस नेकलेस अब आगंतुकों और पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। बृहन मुंबई नगर निगम ने बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हुए मुंबई तटीय सड़क दक्षिण परियोजना के हिस्से के रूप में व्यापक बहाली और विकास कार्य पूरा कर लिया है। एक आधिकारिक बयान में निगम ने कहा कि इस परियोजना में 1.07 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग की मरम्मत की जाएगी और इससे पर्यटक आसानी से गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। कोलकाता में आयोजित 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के चौथे दिन कल सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI कोलकाता में 11 डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इनमें शामिल हैं अर्जुन दास की पुकार, आशुतोष कश्यप की सिबुक, इकबाल हुसैन की सबमर्ज। इन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में दिखाया गया। बुधवार को रेड कार्पेट कार्यक्रम में अभिनेता और निर्देशक अभिजीत गुहा और निर्देशक नंदिता रॉय मौजूद थे। और अब बात महानगरों के मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा शहर के कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता से तेज हवाओं की भी संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, 25 न्यूनतम और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
एंड इन चेन्नई इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius.
और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
Yes, we are beginning with the year 1858. On this day, Gwalior Fort was captured by British troops and the first Indian sepoy mutiny officially came to an end.
और 1998 में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर कैमेनिक को हराकर पांचवीं फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था।
In 1916, on this day, Shrimati Nasibai Damodar Thackeray or SNDT Indian Women's University, first women's and the fifth Indian university was established in Pune by D.K. Karve.
और 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। भारत पाक शिखर वार्ता को संवैधानिकता प्रदान करने का प्रयास भी इसी वर्ष हुआ। और श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से चंद्रिका कुमारतुंग सरकार अल्पमत में आ गई थी और ताइवान का मिसाइल परीक्षण हुआ था।
एंड इन 1921 ऑन दिस डे तिलक यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड इन 1996 ऑन 20th ऑफ जून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स एट जिनेवा कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग दैट इट वोंट साइन द CTBT।
और अब बात करते हैं उन महान शख्सियतों की जिनका आज जन्मदिन है, जयंती है या पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनीता गुहा की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 70 के दशक में फिल्म जय संतोषी माँ में माँ संतोषी का किरदार निभाकर रातों रात प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री अनीता गुहा की आज पुण्यतिथि है। और अनीता गुहा ने महज 15 वर्ष की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। बतौर अभिनेत्री उन्होंने वर्ष 1955 की फिल्म तांगा वाली से अपना फिल्मी डेब्यू किया था। इसके बाद वो 1957 में देख कबीरा रोया, शारदा और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्मों का हिस्सा रही। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत।
एक मंदिर राही दो फिर प्यार न कैसे हो पर देती पिया लौट के तू घर राजा घर आ
मैं तो भूल भाली लाल तुम से तुर पिया बात बात में हूँ नहीं बस
दुनिया इधर है तेरी प्यार इधर है तेरा और दुल्हन बनूंगी मैं नवेली अभी तुम्हें शर मिली होए के
अपने पिया की मैं सुधीरे जगूं अपने आए तो
और आज जन्मदिन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2015 से 2021 के बीच वो झारखंड की गवर्नर रहीं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी परिस्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया और उनका जीवन इसीलिए हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है.
And moving on to birthdays, Divya. Today is the birthday of Rahul Khanna, who is an Indian actor, VJ and writer who works in Bollywood. He is the elder son of actor Vinod Khanna and elder brother of Akshay Khanna. He made his feature film debut in Deepa Mehta's 1947 Earth in 1999 alongside Amir Khan. His performance earned him several awards, including the Filmfare Best Male Debut Award. He has since appeared in Mehta's Bollywood Hollywood 2003 and Wake Up Sid, starring Ranbir Kapoor and Konkana Sen Sharma. और यहाँ पर क्यों ना हम बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी की मूवी से एक बहुत प्यारा सा गाना सुनते हैं.
चलिए.
रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तो रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगी संग.
और आज ही जन्मदिन है प्रसिद्ध भारतीय हिंदी साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का. वे 2013 से 2017 तक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे. वे गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली दस्तावेज साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका के संस्थापक संपादक थे और ये पत्रिका रचना और आलोचना की विशिष्ट पत्रिका है जो 1978 से नियमित प्रकाशित हो रही है. वर्ष 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया. वर्ष 2019 में उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.
Today is the birthday of Nicole Mary Kidman, AC, who is an Australian and American actress and producer known for her work in film and television productions across many genres. She has consistently ranked among the world's highest paid actresses. Her accolades include an Academy Award, a BAFTA Award, 2 Primetime Emmy Awards and 6 Golden Globe Awards. She became the first Australian actor to receive the AFI Life Achievement Award honour in 2024. Also today is the birthday of Vikram Seth, CBEFRSL, who is an Indian novelist and poet. He has written several novels and poetry books. He has won several awards such as Padma Shri, Sahitya Akademi Award, Pravasi Bharatiya Samman, W.H. Smith Literary Award and Crossword Book Award. Seth's collections of poetry such as Mappings and Beastly Trails are notable contributions to the Indian English language poetry canon. And also Divya, ek aur bahut hi jani mani shaksiyat ke bare mein main yahan baat karna chahti hu, jo ki hai Sushma Seth.
Ji.
Sushma Seth is an Indian stage, film and television actress. She started her career in the 1950s and was a founder member of the Delhi-based theatre group Yatrik. Her first film was Junoon in 1978. She is known for playing a mother and grandmother role in movies and on television. And sabko bahut hi acche se yaad hai the notable role that she played as Dadi in the pioneer teething soap opera Hum Log, which was from 1984 to 1985. And today is also the birthday of Lionel Brockman Richie Jr., who's an American singer, songwriter, record producer and television personality. He rose to fame in the 1970s as a songwriter and the co-lead singer of the Motown group Comrade, and writing and recording the hit singles Easy Ceylon, Three Times a Lady and Still with a Group Before the Departure. He has won 4 Grammy Awards, including Song of the Year for We Are the World and Album of the Year for Can't Slow Down. So pehle hum yahan pe bahut hi sundar ye wala gana sun lete hain, We Are the World.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on.
और आज जन्मदिन है हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार, लेखक और कवि भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव का। भुवनेश्वर साहित्य जगत का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में लीक से हटकर साहित्य का सृजन किया।
And I think now we are coming to the closing of our program. Dear listeners, please stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar.